और एक जोक देना क्या बोलते हैं, कितना गहरा ताल्लुक हो, कितना गहरा ताल्लुक हो जो उसको मोहब्बत समझे और ये कैसे नहीं करेंगे जो मेरे ताल्लुक है। अरे कहनी है भर गया कहते तालीम से अगर कोई गलत चीज पढ़ गया तो उसको मत रोको, तालीम को मत रोको पढ़ो। हम तो इसलाह के तराजू लेके बैठते हैं तालीम से, जब हम तुमको जरा उस पर अच्छा होने की तरह बोलेगा फरमाते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती शुरू में हमारे बड़ों में से थे तो दो तीन तक बड़े काम करते कभी घर से दूर ले आते कि लो आप ऐसे भी दूर ले गए। उस जमाने में ये चीजें चिंती होती जब से 50 साल पहले कभी कोई चले आते और कह रहे थे ये खीर पका के लाएगा तो हम ऐसी खीर ला रहे चलो वहां खेत में बैठ के खाएंगे। अब वो खेत में लेके गए अपनी चादर बिठाई और बैठाया और खीर खिलाया देश अब्दुल वहाब। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह जा रहे थे तो क्या कहते हैं एक औरत जा रही थी बूढ़ी तो कीचड़ थी पानी तो इमाम साहब ने मस्जिद संभल के चलिए फिसल ना जाना। कहा कि इमाम साहब मैं फिसल जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन तुम न फिसलना कि तुम्हारे पीछे पूरी कुम्मत तो देख अब्दुल वहाब अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन अब्दुल वहाब उससे गलती ऐसी चीज हो गई तो सारे काम के बराबर अगर तुम जो कलम बात थी अगर उसको यूं नहीं यूं कह देता तो ज्यादा अच्छा ये निकाल दिए गलत कहा उसको यूं नहीं यूं कह देता तो ज्यादा अच्छा। ऐसा वक्त सुनाते हैं आप लोग सुनो ये तो है इस्लाह का पहलू और वही खड़े होके क्या आपने जो बात कही है सही नहीं है दलील आई ना बात कह रहा हूँ कहां से कही आपने बात तो बात कहते हो सर जाओ बैठे नहीं इसी मजबे में आप साफ की बात ये समझते हुए बहुत अच्छी बात है अखलाक को सीखे अखलाक यही गर्व होता है इंसान बच्चे ने गलती की और नवाज उसकी अखलाक नवाज उसकी बच्चा जिद्दी हो जाता गर्व होना चाहिए तरीके से अखलाक को सोचे और आज से होती है गलती है गलतियों की भरमार है गलतियों की भरमार उसकी तरबियत का अंदाज भी हो इसलिए और आप बिगड़ा नहीं करते जाए तो माँ बाप को तो बड़ा दिल जिगरा चाहिए बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा दिल जिगरा चाहिए बच्चों की तरबियत क्यों नहीं होती। उस दिन जो यूरोप अफ्रीका के माहौल में रह रहे हैं वहां तो तरबियत आसान सारा माहौल ही बेदी का व्यायाई का है फिर सबसे पहली बात तो ये कि इन मियां बीवी के अंदर हया और दीन है ठीक है। हया जो है ना हया ये ईमान का अहम जुज है ईमान का अहम जुज अगर हया निकल गई तो सब कुछ निकल गया सब कुछ निकल गया अगर हया निकल गई आपने फरमाया हया ईमान की शाख है जिसमें हया नहीं उसमें ईमान भी नहीं। हया को कुछ समझे ही हाँ आप सत्र में एक साहबी ने फरमाया तुम्हें दो खसलतें ऐसी हैं जो खुदा को पसंद है। एक साहबी ने कह रहे हैं तो मैं दो आदमी जो खुदा को पसंद है बुर्दबारी और हया हया। मैंने कहा पहले से थी या अब हुई है? आपने फरमाया कि नहीं पहले से थी बुर्दबारी और हया, और इन गैरों की जिंदगी होने पर हया को उड़ा दिया, हया को उड़ा दिया। इतनी दूर बात चली गई कि आज उसको समझने की नौजवानों को पहले मियां बीवी अपने यानी बहू अपने ससुर के सामने शौहर से हंस के बात नहीं करती थी, साथ बैठ के खाना नहीं खाती कि हया के खिलाफ। आज इसको कोई हया समझेगा? मैंने एक साहब से कहा कि भाई तुम आई से इस तरह अहमियत को लेकर बच्चे ना करो, कमर में हाथ पड़ा रही तो कहने बीवी बता के पड़ रहे हो, ये जवाब है हयाई का। और हयादार के सुनते हमारे एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह, इस्तकाल किया बड़े बा हया, मैंने उनसे ज्यादा हया इस दौर में किसी को नहीं देखी, इस दौर में ऐसी हया कि गर्मी में भी चादर लेके होते थे। मैंने पूछे आपको नहीं लगती? मैंने लगती जा बेटा, लेकिन चादर के बगैर लेता हया के खिलाफ, आदमी के कपड़े के साथ कहां क्या है वजू करके आते इस मस्जिद में और बैठ के मोजे पहनते तो अपने जामों पे रुमाल डालते, हालांकि कुर्ता शलवार लंबा कुर्ता शलवार पहने होते। क्या आदमी अभी कुर्ता मोजा करके मोजा पहनता है तो और तो कुर्ता तो हट जाता है, हालांकि मुझे तो कपड़ा है ये हया के खिलाफ है, वो अंदर रुमाल के हाथ डाल के मोजे पहनते थे, इसको कहते हैं हया। तो वो अपनी गाड़ी में ड्राइव करते थे, अपनी अहलिया को बराबर वाली सीट पर ही बैठाते थे, पीछे बैठाते थे। तो कहेगा कि ये हया से क्या होता है, जिस तरह हया है उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है। और जब बेहया होते हैं तो हाथ में हाथ डाल के तवाफ करते हैं, तवाफ करते हैं, तवाफ एक नहीं अक्सर ही अक्सर किया हाथ पकड़ हया को, जब पर्दा पड़ जाए ना पता नहीं चलता क्या होगा। और हमसे आगे फिर नौजवान कहते हैं कि हजरत हमसे तो सवाब करना मुश्किल हो रहा है इस हालत को देख, ये दीनदार करते हैं बुरके वाले, बुरके वाले और गाड़ी वाले और इमामे वाले ना परवाह ना गाड़ी की परवाह है ही नहीं, मजबे ना अपनी दीन का हाथ पकड़ के सवाब करना हया का मफूम बदल। हया होती क्या? हया जब बढ़ जाए ना कुछ पता नहीं चलो, पहले किसी के यहां औरत के हमल ठहरा, आखिर तक घर के मर्दों को पता नहीं चलता कि तेरी यहां हमला है, और बच्चों को तो हवा भी चलती। बच्चा पैदा हो जाता था तो बच्चे ये कहते थे कि अम्मी अस्पताल से भाई लेके आई है, अस्पताल से बहन लेके आई, भी पता होता था। अब बच्चों को भी पता है, 5 साल के बच्चे को भी पता है, उन्होंने कह रहे थे शर्म आती है, कहते थे बस इसे कह रहे घरों से बिठाए इनको, इतना भी कह रहे थे वो लोग कहते कि अम्मी कब 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 आप बेबी लेके आएंगे अस्पताल से, कब लेके आएंगे, इतने तो पता है कि हर वक्त अच्छे रहोगे अस्पतालों के। और इसीलिए दुख की बात है कि क्या हो गया, इसे छुपाने की चीजें थी, इसको बेहया ही नहीं समझेगा, उसके भाइयों को भी पता होगा, देवरों को भी पता होगा कि कौन सा महीना चल रहा है और कब विलादत होगी, कैसे संस्कार किया है, इसको बेहया ही नहीं समझ। बहन के बारे में तो भाई की जबान पर कभी लफ्ज आता नहीं था, চড়ার দিকে হাই তাহলে অতি অল্প गैरों के लिए हमें तबीयत की जरूरत है, मतलब मजबे में ऐसी बात कहते हैं हिजाब भी होता है। इसे फोकर ने साफ लिखा है कि जो भी नियम भी बेहया इसे मिलेंगे ना तो उस जो औलाद का जरूर बेहया होगी। इंटरनेट ने और इन चीजों ने बेहया कर दिया और तो कोई फर्क ईमान का हिस्सा है निकल गई तो सब निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये जाहिर अखलाक होने से जाहिर ईमान का ताल्लुक तो है यार, अल्लाह एक जगह सुनने बाद में याद नहीं आ रहा कहा के हाँ कि हया और ईमान ये दो जुड़वा चीजें हैं, जब एक जाएगी तो दूसरा भी चला जाएगा। ईमान नहीं है तो हया भी नहीं होगी, और अगर हया नहीं है तो फिर ईमान भी चला जाएगा। ये दोनों जुड़वा चीजें हैं। अगर हया चली गई तो ईमान भी चला जाएगा, और जब ईमान नहीं होगा तो हया आएगी, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ चलती है, ईमान और हया। कुछ थोड़ा सा हम अपने आप सोच रहे हम क्यों दीनदारी को बदनाम कर रहे हैं, क्यों दीनदारी को बदनाम कर रहे दीन के नाम पे धब्बे क्यों डाल रहे और इस रिहाई की वजह से परेशानियां पड़ी जो है कि कोई परेशानी कोई परेशानी कोई बहू अपने जेठ और ससुर के सामने नंगे सर नहीं रहती थी, नंगे सर नहीं रहती और तो पट्टा और चादर भी पूरा होता था जैसे खाने ये हया थी हया बड़ों की, यानी इतनी हया के जब मी और बीवी चलते थे तो शोहर आगे होते थे बीवी पीछे पीछे चल रही होती थी, लेकिन दूर से देखने वाले को पता चले कि मियां बीवी क्या सवारी में इतनी आम नहीं गाड़ी के पास गाड़ी और अभी हमें पट का जवाब मिलता है जो मैंने कहा दिन के बाहर तो पड़ जाए तो करो फिर बेटी भी यही करेगी तुम्हारी और क्या करें क्या करो तो सर पकड़ो 14 साल की उम्र में ये हो गया और 13 साल की उम्र में ये हो गया करो सर पकड़ो हम चाहते हैं कि हम तो करें सारी गड़बड़े बच्चे चीजें चलेंगे ना हुआ है ना हो ना हुआ है ना हो बच्चों के खातिर बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी आदत को भी छोड़ना पड़ता है, अपने मिजाज को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी बात पसंदीदा चीजों को भी छोड़ना पड़ता है औलाद की तरबियत के खातिर, क्योंकि औलाद से असर माँ बाप का पड़ता है, तकरीरों का नहीं पड़ता। आप पढ़ा लो नखला के अंदर और आप पढ़ा लो गजल के अंदर और आप पढ़ा लो इकरा के अंदर गांधी शहर पढ़ा लो कोई बच्चे का असर नहीं पड़े जब तक के माँ बाप की जिंदगी नहीं जीत नहीं होगा। ये इस्लामिक स्कूल में अमरीका वाले भी कहते हैं इस्लामिक स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो माँ बाप की अपनी जिंदगी का असर बच्चे पर पड़े इसलिए बेटा जिसकी शादी होती है ना उसके बेटा कल भी बच्चा आया था परसों जिसकी शादी होती है मेरे बेटे जो अब तक तो थी अपने जिंदगी का मसला कोई बात नहीं जैसे गुजरी गुजरी अब मसला पूरी एक नस्ल का है नस्ल का आई जाने वाली नस्ल का तुम भी अभी भी दिन पे चलोगे तो तुम्हारी और आज दिन पे आएगी अगर तुम नहीं चलते तो पढ़ा लो भी तो फैशन चल गया इस्लामी के स्कूल इस्लामी स्कूल अगर इस्लाम का नाम नहीं है वहां इस्लामिक स्कूल के अंदर वो भी मुताबिर हुए हैं गैरों जैसे इस्लामिक बैंक होता है इस्लामिक बैंक बैंक लगे और इस्लामिक राह ना क्या खोलो किसी नाम से हमारी जो लड़कियां काम करती हैं वो स्टाफ पास की, ये स्टाफ मिल जाएंगे, उसके नाम से स्टाफ मिल जाएंगे। ऐसे स्टाफ में स्कूल खुल गए तो बाबा की जिंदगी का असर पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जो बुजुर्ग बने वो अपनी वजह से बड़े, अपनी माँ की गुजारी की वजह से बने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह के बारे में भी ये लिखा है उन्होंने कि इससे बड़े इमाम और इतनी किताबें लिखती हैं कि आदमी की अकल नहीं काम करती थी कि इतनी कम उम्र में इतनी किताबें कैसे लिखनी, उनकी अपनी वालदा की जिम्मेदारी की वजह से। शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया था और 2.5 साल की उम्र में 1.25 हिफ्ज था, 2.5 साल की उम्र में 1.25 हिफ्ज था। इसलिए कि वालदा हाफिज़ा थी, हमल के दौरान कुरान पढ़ती रही, विलादत के बाद कुरान पढ़ती रही और कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया और कभी यासीन शरीफ पढ़े बगैर दूध नहीं पिलाया। वो बच्चा 5 साल की उम्र में हाफिज बनेगा तो कौन बनेगा, जिस माओ को यह भी पता नहीं कि वजू भी कोई चीज होती है। तो बच्चों की तरबियत के खातिर माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको बदलना पड़ता है। माँ बाप को बदलना पड़ता है, अगर माँ बाप नहीं बदलेंगे तो बच्चे नहीं बदल सकते। चाहे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा दे दीजिए, तो खुशूस जो लोग दैनिक मुबारक में रहते हैं क्या वो जद्दा में क्यों नहीं होती, इतनी बात दुबई में क्यों, दुबई तो आज वैसे भी यूरोप में बाप है। इन माँ बाप को अपनी जिंदगी नींद पिलानी पड़ेगी तब इनके बच्चे नींद आ रहे हैं, तकरीर से नहीं बनता, अल्फाज से नहीं बनती। एक अल्लाह ने से उनकी शादी हुई और नींदा बोलू जब हमल ठहरा तो दोनों ये कहेंगे कि अब हम बहुत एहतियात करेंगे कि कोई अल्लाह का हुक्म न टूटे वरना हमारे बच्चे पे इसका असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा और एहतियात करेंगे, पर ऐसी जिंदगी गुजारी अल्लाह ने बेटा दिया तबीयत की, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को टहला रही बाहर लेके लिए, तो वो बच्चे को उंगली पकड़ के बाहर निकले गली में, तो गली में देर का जरा देरी तो देर नीचे गिरते ही हैं, तो वो बच्चे ने एक देर उठा के मुझे रख दिया बच्चा, तो फौरन घर वापस आए और क्या हमें हम शुक्र गलती हुई गलती क्या हुआ क्या बच्चे ने बगैर इजाजत के सड़क पर देर उठा के हमसे बोला। याद आ गया कि ये बच्चे जो पेट में था तो ये पड़ोस पे जो पड़ोसी के घर में बेर का दरख्त लगा उसकी शाखें हमारे सहन में लिखी हुई, तो वो गेर बेर सहन में झड़ गए थे, मैंने एक बेर उठा के खा लिया तो मुझे ख्याल भी आया तो ख्याल आया कि एक बेर ही तो है क्या ये माँ बाप को आज समझ नहीं आती, ये बच्चे जितनी गड़बड़ कर रहे हैं ये हमारी वजह से कर रहे हैं। इसी जब शादियां हो जाए तो बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, जब अपनी सुस्तियों को कोताहियों को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फुकहा ने यहां तक लिखा है फुकहा इकराम से मियां बीवी के मिलने से जो हमल ठहरे और उसकी वजह से फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो नाफरमान होगा। इतना आसान है नमाजों का पता करना, आज इसमें से जो नजर हट गई जाहिर तरीके से चली गई कि फला स्कूल में दाखिल कर दिया मॉन्टेसरी में, वहां जो टीचर है ना उसने इतनी तरबियत करती है, करवा रहा उससे कैसी बेटी तरबियत करती है कि वो अमरीका से तरबियत लेकर आएगी, शायद स्कूल जो कुछ आगे होगा सही तो पढ़ा रहे हो ना, जैसे जो सारी चीज मिलते हैं ना कि पढ़ाने वाली पुस्तक अमरीका की चल जाएगी आप तक, तो क्या सिखाएंगे बच्चों, ये सिखाएंगे अपनी जिंदगी में, माँ बाप की जिंदगी में नहीं, माँ बाप गुल खिलाते फिरे और कहेंगे इस्लामिक स्कूल में पढ़ा कर दीजिए बच्चे बन जाएंगे महाल महाल इत्यादि, पहले अपनी जिंदगी में तबियत तब्दील है। और हया जो है ना, हया इसको मजबूत पकड़े, इस मैं फिर कहूंगा इस इंटरनेट ने सबसे ज्यादा बेहया किया, इससे ज्यादा बेहया करने वाली कोई चीज नहीं है, कोई नहीं है। मोबाइल इन दोनों ने बेहया किया, इससे पहले इतनी गलत चीजें सुनने में नहीं आती थी जैसे मोबाइल और ये दो चीजें नहीं आती, और हम अपनी बच्चियों को उस पर बैठाते, बच्चियों को बैठाते कुछ क्या हो रहा है, अच्छा होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, जो कुछ खिला है बच्चों परेशान, और खुद तो सारे करतूत करें और बच्चों से कहेंगे ये मत देखो, कैसे नहीं देखेंगे बच्चे, असर पड़ते हैं माता, ये खुद को बदले, खुद को बदले, अपने अंदर हया पैदा करें, और जो गलतियां हो गई उसमें तौबा कि अब नहीं करना, ये एक नस्ल को तबाह करने के हम कातिल है, कातिल कातिल नस्लों के कातिल, नस्लों के कातिल है, फिर बाद में कहते हैं कि बच्चों जा रहे बाहर, यार बच्चों को फ्यूचर अच्छा हो जाए, पढ़ लेंगे ये हो जाएगा, ये बात कहते हैं अपना फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो ये नहीं है वो नहीं है, अरे जाने बहन मैंने क्या करेंगे बेटा तुम्हें वहां, यहाँ 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि जो इंग्रेजी जुड़े लेकिन थोड़ा अच्छी लाइफ होगी, ये होगा मैंने बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए औलाद को दाव पे लगा देना, इससे बड़ी खुदगर्जी दुनिया में कोई, इससे बड़ी खुदगर्जी कि मेरी जिंदगी बन जाए, मेरा अच्छा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, मैं बैल ड्रेस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, इसके खातिर इसकी वजह से औलाद को दाव पे लगा दें, दाव पे लगा दें। अब रोज सुनने में आता है कि जिन चक्करों में गए थे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, किसी की बेटी ने गोरे से शादी कर ली और किसी के बेटे ने गोरी से शादी कर ली, हर मुसलमान की एक जोड़ी बीते वाक्य आता रहे, बनाओ अपनी जिंदगी, बलिया से मैं पानी की जगह फोक, बलिया से मैं पानी की जगह जूस, सूत की गाड़ी मिल गई, सूत का मकान मिल गया, अब रो पूरी नस्ल को दाव में लगा दिया, नहीं लगा दिया, जिस लड़की ने गोरे से शादी कर ली या जिस लड़के ने गोरी से शादी कर ली बगैर मुसलमान किए, पूरी नस्ल गई है नहीं, उसका माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगता है कि बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है, बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है, कर्जे ले लेके बैठ गए इसने बाहर, ये बच्चों के कमरों में छुरे ठोक रहे माँ बाप, अल्लाह ने ये जवाब देना पड़ेगा। हमारे अब्दुल मजीद खान साहब रहमतुल्लाह ने जब बेटे को वहां पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा तो काजी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह जब हमारे मशायख हज़रत के पास गए, ऐसा वो उसको पढ़ने के लिए वहां भेजे, दुआ करते अल्लाह हिफाजत से रखे, ऐसा फरमाया कि समंदर में धक्का देगी मुझसे दुआ करते हो पैर गिरे ना, समंदर में धक्का दे दिया और अब मुझसे कह रहे हो दुआ करो तो पैर गिरे ना, इसलिए भाइयों हया हया जो इस्लाम का एक हिस्सा है उसको मजबूत पकड़े, इसको हाथ से न जाने, और ये अपने अंदर पैदा कर ले, किसी को न देखे अपने अंदर पैदा, जैसे बर्फ की सिल्ली जहां पड़ाई पड़ी हुई हो तो उसकी ठंडक दूर तक आती है और जहां हीटर चल रहा हो तो पूरी जगह को गर्म कर देता है, এরিয়া যায়, সে তো গাড়ি লিটার খোলা 20 গাড়ি গরম হয়ে যায়। তো হায়াদার কা আসর আসপাস ভি পড়েগা আর বেহায়াই কি বুরাই না দূর দূর তক চলে। আপনে অন্দর হায়া পেদা করে আপনে অন্দর হায়া কি মেনে নি দেখনা গলত, মেনে নি সুননা গলত কিসকো, আর মেনে নি বোলনে গলত বোল, মেন নি যাওঙ্গা গলত মাহল মে চাহে ওয়া কিতনি দিলচস্পি কে আসবাব হো। ये कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या एक्टिविटी हो रही है कि मिक्स गैदरिंगों में जा रहे हैं? ये 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 खुशी के यानी अस्बाब बताए जाते हैं। आदमी ऐसा बैकवर्ड भी ना बने। चलिए मैं तुमसे बात ही करता हूँ, बात ही करता हूँ, बाकी सब कुछ है और क्या है? तो खुद को कंट्रोल करेंगे, मैंने नहीं देखना गलत, मैंने नहीं बोलना गलत बोल, मैंने नहीं जाना गलत माहौल के अंदर। अब जिम खाना के मेंबर होना पक्की है, फलां क्लब के मेंबर होना मैरिन का और इसका इसका पक्की है। बताते बाकी इतने इतने क्लबों का मेंबर, एक काम करते हैं 37 क्लबों का मेंबर, मुझसे कहा 37 क्लबों का मेंबर। इनको पता नहीं कि इनकी मेंबरशिप की वजह से उस क्लब में जितने गुना होंगे सब ने इनका हिस्सा, चाहिए एक दफा भी ना जाते हो। एक अगर मैं जाता नहीं हूं तो मेंबरशिप रखी हुई है, जाता नहीं मैं मेंबरशिप तो रखी हुई है। तो ये भी ऐसे गुनागार होंगे जो गुना वहां कर रहे हैं, क्योंकि जो नेकी का जरिया बने उसको भी नेकी करने वाले का सवाब, और जो बुराई का जरिया बने उसको भी बुराई करने वाला गुना। ये बुराई में मामिन तो बन गया ना, उसकी फीस देखे 1 लाख रुपए सालाना दे रहा है फीस। ये बड़ाई की चीजें आज, ये फड़ा क्लब का मेंबर, जिम खाने का मेंबर, यानी हर सिर्फ स्विमिंग पूल का, सिर्फ स्विमिंग पूल के मेंबर थे। उन स्विमिंग पूल में जितने लड़के लड़कियां लगे नहाएंगे उसको बुरा नहीं मिलेगा? ये सिर्फ बोले बात जो गैर चीज को पहन के नहाना तो गुण ही है, स्विमिंग पूल तो बड़ा नहीं मिलेगा आपको। ये अकलों में नहीं आ रही गैरों की तकलीफ की वजह कि मैं क्या कर रहा हूं, स्विमिंग पूल का मेंबर या तुमको लहराओ शहरी लिबास पहना के सारे गुणों को बबा ले। इसी मेरे भाइयों संभाले अपने आप को, हया ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा, औलाद की खातिर बाहया बनना पड़े, खुशूस बाहर रहने वाले क्या रिवाजी चीजें नहीं थे, वाकई वाकई है। वरना अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि औलाद की हमने क्या की। किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना जहां शराब सिखाई जाती हो, ना सिखाया जाता हो, या भी सिखाया जा सकता है स्कूल या और गलत चीज पाई जाती है। इस वजह मैं बहुत अच्छी भलाई की बच्चों को पढ़ा, स्कूल में पढ़ा रहा, इसके जवाब अल्लाह के देना पड़ेगा कि तुमने एक नस्ल को तबाह किया। अखलाक और हया तेरे आदमी को कीमती बनाता है, कहीं चला जाए इज्जत वाला बन के रहेगा, कहीं चला जाए किसी मुल्क में चला जाए, चाहे यूरोप में जाए, चाहे अमरीका में जाए, चाहे रशिया में जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाए, कहीं जाए ये अखलाक और हया वाला आपको कतारा बनते रहेगा। वक्त की तौर पर थोड़ी सी बात ये वैसे फिर आपको गैर देश की बात को माने, गैर भी माने, एक दो मतलब देश को वाक और हम उन्हीं की जैसे बन के रहना चाहेंगे तो हमें फूकेंगे। एक पादरी ने कहा तो बाद मुसलमान हो गया, पता नहीं 26 या कितने चर्च का वो जिम्मेदार था, उसे कहा कि अब आप हमारा लिबास पहन के हमारे मुल्कों में आते तो हम आपको कोई हैसियत नहीं, हमारी जिंदगी आपको कोई हैसियत नहीं, और जब आप अपने लिबास में आते हैं तो हमारे को उसका रोग पड़ता है, रोग पड़ती है राइवल को जमा करके बात की किस पार्टी इसलिए लगाने आया था मुसलमान हो गया। तब इन 26 चर्चों में घंटी के बजाय अजान की आवाज बुलंद हो, आपको नसीहत करके जाना चाहता हूँ एक तो आप अपने लिबास पर छोड़ें, इसमें हमसे रोक पड़ते हैं, और दूसरे का आजान दे के जमात से नमाज पढ़ना छोड़ें, ये हमारे दिलों को फाड़ देती है। और जब आप हमारे जैसे बन के आते हैं सारी जिंदगी के भी उनसे लिबास नहीं करने लगे, जिनका वहां जा रहे हैं तो लिबास पहन, लेकिन हमारे नजर में आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत अल्लाह के इस्तेमाल में एक कशिश और जानियत रखी, और इतना है कि मलक ना बने, मलक मलक जो हमारे मलक बन गए बाहर जाके, और यहां भी साउथ अफ्रीका भी समझा के आया दो तीन लोगों को, नहीं दीदारी को मलक बने को नहीं कहते, ऐसा कुर्ता और ऐसा लुंगी और ऐसे बाल और ऐसी पगड़ी, कोई दीन नहीं, कोई दीन नहीं, ये दीन समझो ये दीन है नहीं, अल्लाह खूबसूरत है खूबसूरत करे के अंदर, उसे करे के अंदर सब चीज अख्तियार करो, मतलब उसको मुतरफ करो, गाड़ी खोलो तो उसमें बैठ के वही रहता है, ऐसी जल्दी रखती है, ये दीन है। तो हमारी भाई मुझे बात साहब रहमतुल्लाह की गाड़ी देखता चमकती, एक एक इतनी चीज तो नजर जाए तो नजर पड़ी, हमारे बाहर के साथियों की गाड़ी में क्या होता है कई उसके रिश्ते के छिलके पड़े हुए, कहीं चॉकलेट का कागज पड़ा हुआ है, कहीं किसी बच्चे का कपड़ा पड़ा हुआ है, कहीं जम्पर पड़ा हुआ है, कहीं जिंदगी बैठा था, माफ कीजिए माफ कीजिए, गाड़ी साफ नहीं कर सका था, एक मिनट कर रही अगर ठीक करो, कोई दिन कैसे तालुक नहीं है, मलंग बना है, मलंग चप्पल पहने हुए दफ्तर चले जा रहे हैं, मुंगी हमारे लिए दफ्तर चले जा रहे हैं, इस्लामी कोई इस्लामी बात नहीं, मैं नहीं कहता कि उनके कपड़े पहन के जाए, अपने पहले कपड़े पहने कायदे से पता है, कायदे से पता है, बालों को कायदे से तो रखते, गाड़ी को कायदे से तो रखते, देखने वाले भी बच्चा डर जाए इस गाड़ी से, कोई दीनदारी, हमने नहीं अपने बड़ों को देखा कि जुगत हमारे नजदीक तो दीन वही है जो अपने बड़ों को देखा, सुधा तो मलन बने दीनदार बन गए, और ना ऐसे उनके रंग में रंगे ये नहीं पता चलेगी कि कौन है अपना या गैर, तो बच्चों के साथ ही सारी कुर्बानियां देनी पड़ती, यहां भी वहां भी, ये भी कुछ कम भी रहा थी, बाहर उठकर लेकिन उसका बाप बन गया, यहां भी आप चले जाइए किसी बड़े स्कूल के ऊपर दरवाजे गेट पर खड़े जाइए, जो छोड़ने आ रहे होंगे माँ बाप उनकी शक्ल स्कूल से भी देख लो, जो अंदर स्कूल है उनको देख लो, एक नहीं लगे वो मुसलमान, ये औरतें जींस पैंट पहन के और पजामे पहन पहन के स्कूल में छोड़े जाती है, समझिए मुसलमान औरत सकती है, ये लगती है मुसलमान औरत, एक नजर से देख के पता चल जाएगा कि मुसलमान है, यह नाम से खाली क्या होता है अब्दुल रहमान रख बच्चे आदमी के अंदर नस्बत मुंतकिल होती है, नस्बत इसे तसव्वुफ का मतलब ये ना कि जो शेख की नस्बत होगी मरीज में आए, इसे शेख को सबसे ज्यादा अपने आप को बदलना पड़ता है, उसकी नस्बत मुंतकिल होती है, शेख में आया है तो मरीदीन में भी आएगी, शेख में इस्तेमाल सुनने से तो मरीदीन में भी आएगा, शेख के बयानों से नहीं आएगा, इस सबसे ज्यादा डर में शेख होता है, उसका असर पड़ा, अल्लाह हम सबको अपनी तरफ निगाह करने की तौफीक अता फरमा दे, मेरी सारी बात इतनी तफसील से रखी है, अभी सफर में निजामुद्दीन के साथ हमारे हजरात थे, उनके सारे बयान का खुलासा अपनी जात का बनाना होता था, नवाज नजरों से होता है, हम मजमे को बनाने का समय है, हम वहां से बनेगा आप देखें, हम ठीक हो जाए जब ठीक हो जाए, अब ठीक नहीं होते तो कोई भी ठीक नहीं, तो अपने ठीक करने के लिए जरा थोड़ा सा अपने नफ्स पे कदम रखना पड़ता है, और उसने आपको ठीक नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता,